रात्रि क्लास चल रहा था 18/1/1966, इसी तारीख को 1967 में रिवाइज हुई। दो पेज के मध्य में बात चल रही थी, हम सभी पावन बन रहे हैं, बन करके मनुष्य से देवता बनाएगा तो मनुष्य को ही आकर देवता बनाएगा ना। तो ये मनुष्य है, मनुष्य कहा जाता है मनु की औलाद को। जो मनुष्य मन से मनन चिंतन मंथन करता है उसे मनुष्य कहा जाता है। सिर्फ ये ब्राह्मण कहलाते हैं मनुष्य, ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण। क्योंकि ये प्रजापिता ब्रह्मा के अडॉप्टेड चिल्ड्रन से हैं, और शास्त्रों में प्रजापिता ब्रह्मा का गायन भी तो है ना। आरंभ में होता है पिता प्रजापिता, जो अंत में बनता है पुरुषार्थ करके विश्व का पिता, विश्वपति कहो तो शास्त्रों में प्रजापति कह दिया है। बच्चों को ये भी बुद्धि में रहता है कि अभी नाटक पूरा होता है और अभी हमको वापस जाना है, जाना भी है फिर आना भी है। फिर ये भी जानते हैं कि हमको पहले पहले सुख के संबंध में आना है, क्योंकि संबंध जोड़ा ही जाता है सुख के लिए। तो अभी दुखों का बंधन पूरा होता है, और दुनिया की हर चीज पहले सत्व प्रधान होती है, फिर रजो प्रधान होते हुए तमो प्रधान बनती है। तो जो सुख का संबंध जोड़ा था सतयुग में, वो द्वापर में रजो प्रधान होते हुए कलयुग में तामसी दुखदायी बन जाता है। तो दुख का बंधन कहा जाता है, और ये भी समझना चाहिए कि अगर थोड़ा भी समझा है कि सतयुग में सुख के संबंध में थे, संबंध माना ही संपूर्ण, और बंध माने बंधन, संपूर्ण सुखों का बंधन, दुख का नाम निशान नहीं। तो दुख का तो वहां बंधन था ही नहीं, सुख ही सुख था, और था भी वहां एक ही धर्म, जी पहचान तो बहुत अच्छी दी जाती है ना। जब भारत स्वर्ग में था क्योंकि भारत तो अविनाशी खंड है और जो भी विदेशी धर्म खंड हैं विधर्मी धर्म खंड हैं विपरीत धर्म वाले हैं विपरीत देश वाले हैं वो सब विनाशी खंड हैं। न सृष्टि के आदि में थे न अंत में रहेंगे। भारत देश अविनाशी खंड है क्योंकि अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड की शुरुआत यहां से होती है। तो भारत जैसा महान पवित्र खंड कोई होता ही नहीं। और यही भारत खंड जब तामसी बनता है तो इन जैसा महान पवित्र धर्म खंड कोई होता ही नहीं। क्योंकि ये बनना ही है। जो जितना सतो प्रधान बनता है उतना तामसी भी बनता है। तो जो भारत महान पावन था तो भारत और भारतवासी महान पतित बने। भारत में ही ये याद करते रहते हैं। जब पतित बनते हैं क्या याद करते हैं? हे पतित पावन आओ और देशों में नहीं याद करते। क्यों? क्योंकि और धर्म खंड वाले और देश इतने पतित दुखी होते ही नहीं। तो भारत में ही बुलाते हैं। ये पतित पावन ये अक्षर और कोई भी जगह में होता ही नहीं है। भले अंग्रेजी में लोग कहते हैं लिबरेटर आओ लिबरेट करो परंतु वो तो कहते हैं कि दुख से आकर के लिबरेट करो। हेवन को स्थापन करने वाले आओ आकर के हमको दुखों से लिबरेट करो मुक्त करो। वो अंग्रेज लोग जानते हैं कि स्वर्ग की स्थापना करने वाले हैं और उनका नाम भी रखा हुआ है लिबरेटर। जैसा काम वैसा ही नाम रखा जाता है। स्वर्ग की स्थापना करने वाले और रेणु का नाम कहते हैं दुखों से लिबरेट करो, और लिबरेट करने के लिए गाइड करो, रास्ता बताओ, यानी अपने तरफ ले जाओ। अपने तरफ माने जहां ले जाओ, और जो ले जाने वाला है लिबरेटर का है। तो स्वयं भी मुक्त होगा या नहीं होगा, बंधन में बंधने वाला तो नहीं होगा ना। तो जहां ले जाओ वहां कोई प्रकार का बंधन नहीं। ये तो यहां कहा जाता है, हे पतित पावनाओ, जहां पतित हैं, दुखी हैं, तो ये समझाने में सहज होता है। भारत सो पावन, भारत सो पतित, ये बहुत अच्छी मुझेली बातें हैं, जो कहते भी हैं राम और रावण। रावण कहा जाता है रुलाने वाले को, रावयते लोकान, और राम कहा जाता है आनंदित करने वाले को, रम्यते योगिनो यस्मिन् इति राम, जिसमें योगी लोग रमण करते हैं, खेलते हैं। तो उनको राम भी कहते हैं, और सारा दिन राम 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 कहते रहते। तो जो कहने वाले हैं उनको उस समय कोई राम और सीता थोड़े ही याद आती हैं। राम राम तो कहते ही हैं, किसको कहते हैं, साकार को या निराकार को है? साकार को कहते हैं। साकार तो शरीर के बंधन में होता है, तो जो बंधन में है उसे लिबरेटर कैसे कहेंगे? फिर वो दूसरों को लिबरेट कैसे करेगा? तो निराकार, जब निराकारी स्टेज में स्थित होता है तो देह के बंधन से मुक्त होता है, परंतु शास्त्रों में ये जो इतनी बातें निकल गई हैं, उन शास्त्रों की बातों में विचारे बहुत मुझे हुए हैं। और उन भक्तों को भक्ति मार्ग के बगैर कुछ सूझता ही नहीं है बिल्कुल। अठारह छियासठ की रात्रि क्लास का तीसरा पेज, भक्ति मार्ग में सब खत्म हो जाते हैं। ये भोग की भी कुछ युक्तियां हैं जो बाबा समझाते हैं। भोग में उनको बुलाते हैं, तो कोई समझे कि देखो इनके कोई पितर ने शरीर छोड़ दिया था तो दूसरों को कहा जाता है कि भाई देखो कि तुम्हें उस शरीरधारी के ऊपर कोई एतबार है, विश्वास है ना, इसलिए जल्दी से आकर के अपना बरसा ले लो। देखो इसने गफलत की, खुद कहते मैंने गफलत की, जो मैंने उस समय अटेंशन नहीं दिया, तो कोई को मालूम थोड़ा ही पड़ता है कि काल किसको कब खा जाएगा। अच्छा बैठे बैठे देखो तुमने अभी देखा शास्त्री का कैसे मजा हुआ। हम तो इस खेल को मजा कहेंगे ना। देखो खेल में कैसे ऐसे ऐसे मजे होते हैं। बैठे बैठे ये गया और फिर क्या करते हैं, देखो मिट्टी उठा करके कितने चक्कर लगाते हैं। उस मिट्टी को जाकर के नदी में डालते हैं, है कहां की बात। सारी परंपराएं संगम युग से निकलती हैं। नदी कोई वो पानी की नदी नहीं, ज्ञान गंगा की बात है। ज्ञान की नदी की बात है। कोई नदी ऊंची ऊंची पहाड़ की स्टेज पर बहती है, बहुत जल की धारा होती है। कोई नीची स्टेज में बहती है, कभी सूखती भी है। तो देखो नदी में जाकर के उनके देह अभिमान की मिट्टी को गिरा देते, तो अभी कहा इसने गफलत की। इसने माने किसकी तरफ इशारा करते थे, किसने, अरे ब्रह्मा की तरफ इशारा करते थे ना। शिव बाप ज्योतिबिंदु की बाजू में कौन बैठा है, ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा की सोल। तो बोला इसने गफलत की, थोड़ी गफलत हो गई। देवान आया और हार्ट फेल हुआ। तो देवान छूट गया या और ही सूक्ष्म रूप धारण कर लिया? देवान और ही कड़क हो गया। तो ब्रह्मा बाबा का देवान कैसे मिटा होगा? है आज की दुनिया में भी जो परिवार में पति होता है वो पत्नी की बात मानता है, मानता है, है? नहीं मानते? दुनिया में कहावत भी है, घर की मुर्गी दाल बराबर। है पवित्रता की बात। तो बताओ, ब्रह्मा की सोल जो ज्ञान चंद्रमा कही जाती है, वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की आत्मा देवांग से कैसे छुटकारा पाती है? उनका देवान कहां जाकर गिरता है? है अरे ब्रह्मपुत्रा नदी का नाम सुना? ब्रह्मपुत्री भी कहते हैं। किसकी पुत्री? ब्रह्मा की पुत्री। कौन है? है हाँ, लक्ष्मी बनने वाली माता। नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी। तो ब्रह्मा से क्या संबंध था उसका? है बाप और बेटी का संबंध था। आज की दुनिया में भी देखो, जो बाप होते हैं वो बेटी की बात ज्यादा ध्यान से सुनते हैं, मानते हैं, या माँ को ज्यादा महत्व देते हैं? क्यों? है क्योंकि बेटी में पवित्रता की पावर होती है। तो देखो, मरते हैं तो मिट्टी को उठा करके कितने चक्कर काटते हैं भक्ति मार्ग में, फिर नदी में जाकर डाल देते। तो ये परंपरा कहाँ से शुरू हुई? संगम में ब्राह्मणों की दुनिया से शुरू हुई। हम ब्राह्मण ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण कहे गए, जिसे ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना हुई वो ब्रह्मा हार्ट फेल होकर शरीर छोड़ने के बाद और ही जाती दे अभिमानी बना, या कुछ देवान खत्म हुआ और ज्यादा देवान बढ़ गया? भक्ति में क्या करते हैं? है भक्ति नाम क्यों पड़ा? भक्त क्या करते हैं? भागते रहते हैं। बुद्धि को ठिकाना मिलता ही नहीं तो कितने चक्कर का लगाते हैं। बाद में फिर नदी में जाकर डाल देते, तो ब्रह्मा का देह बन खलास करने के लिए कौन सी नदी निमित्त बनी है? कौन है? लक्ष्मी बनने वाली आत्मा राधा का हो। राधा कौन से वंश की? चंद्र वंश की। तो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा का देवान चंद्र वंश की राधा जब सूर्यवंशी कृष्ण को सिलेक्ट कर लेती है, चुन लेती है, फैसला कर लेती है, तो ब्रह्मा की आत्मा भी अपने देवान को छोड़ देती है। तो देखो, नदी में जाकर डालते हैं, यानी वो जो उनकी हट्टी है वो भी पावन बन जावे। क्या आत्मा तो पावन बने, लेकिन आत्मा के साथ साथ जो देहभान है, हट्टी का देहभान, जब विनाश होता है, फाइनल विनाश, तो किसके द्वारा विनाश गाया हुआ है? है शंकर विनाश करता है, करता है, है शंकर का तो ऐसे ही नाम लगा दिया। शंकर तो कुछ करता ही नहीं, करना धरना तो इंद्रियों के द्वारा होता है, और वो याद में बैठा हुआ है या इंद्रियों से कुछ काम कर रहा है? याद में बैठा कोई इंद्रियों का काम तो है नहीं। तो बोला शंकर कुछ नहीं करता, ये विनाश का काम कौन करती है? है कौन? शक्तियां करती हैं, असुर संहारिणी शक्तियां कही जाती है। तो वो असुर संहारिणी का नाम क्या है? महाकाली। उसे गऊ कहो, नदी भी कहो, ब्रह्मपुत्र नदी जब पूरब से टक्कर खा करके दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ती है, सागर की ओर जाने के लिए मुड़ती है, तो सागर की तरफ कब मुड़ जाती है? कौन से शहर से आकर टक्कर लेती है? गौहट्टी। ये रही उनकी हट्टी। कौन? हट्टी स्वभाव धारण करने वाली कौन हुई? जिसके सर पर वही ज्ञान चंद्रमा विराजमान रहता है। किसके सर पर? महाकाली के सर पर। वो महाकाली हट्टी स्वभाव की गौ है, वो भी पावन हो जाती है। सिर्फ ज्ञान चंद्रमा ही पावन नहीं हो जाता, जो आत्मा उसमें प्रवेश करके पाठ बजाती है, कौन? ब्रह्मा की आत्मा, जो इतनी सहन शक्ति वाली आत्मा जब तामसी बनती है तो किसमें प्रवेश कर जाती है? है महाकाली में प्रवेश कर जाती है। तो महाकाली जो शरीर की यादगार है, ब्रह्मा का वो शरीर जो पूजा जाता है, नहीं तो ब्रह्मा की मूर्ति नहीं बनाई जाती, ब्रह्मा की पूजा नहीं होती, ब्रह्मा के दाढ़ी मूछ वाले के मंदिर नहीं बनाए जाते, ब्रह्मा को कोई याद भी नहीं करता। परंतु वो ही ब्रह्मा जब गौहट्टी में प्रवेश करके पार्ट बजाता है तो उसकी पूजा भी होती है। पूजा होती है कब? जब वो हट्टी गौ भी पावन बन जाती है। क्या अपवित्र है तब मुंह काला होता है या पवित्र होती है तो मुंह काला होता है? अपवित्र है तो मुंह काला, पावन हो जाती है तो गोरा। तो देखो मां लक्ष्मी कही जाती है, जैसे महानारायण कहा जाता है। एक है नर से नारायण बनने वाला और दूसरा है नर से प्रिंस बनने वाला। दोनों आत्माओं के स्वभाव संस्कार का मेल होता है। बादल एक राज ब्रह्मा वाली आत्मा जिसने सहनशीलता का पाठ बजाया, माँ होती है सहनशील। दुनिया में भी माताओं को देखो कैसा पाठ बजाए रही है, है? सहनशीलता का पाठ बजाए रही है। तो माँ सहनशील होती है और बाप सामना करने का स्वभाव वाला होता है या सहनशील होता है? सामना करने की शक्ति होती है। माँ है धरणी माँ, धरती माता कही जाती है। और धरती माता उदाहरण के तौर पर हद की दुनिया में देखा जाए तो धरती माता किसकी गोद में समाई हुई है? सागर की गोद में समाई हुई है। तीन हिस्सा दुनिया में सागर है और एक हिस्सा धरणी है। तो देखो ये माता धरणी भी पावन बन जाती है, बाकी आत्मा ने तो जाकर के दूसरा शरीर लिया। पीछे बैठ करके मिट्टी किसमें भी डालो, कुछ भी करो, क्या भी करो, वो मिट्टी क्या करेगा? वो तो निकला कौन? मिट्टी में से कौन निकला? मिट्टी के पुतले में से कौन निकला? अरे जगदम्बा में जो चंद्रमा रूपी आत्मा समाई हुई है वो वहां से निकलती है तो जाकर के शरीर धारण करेगी। क्या करेगी? हैं? शरीर में जाएगी या नहीं जाएगी? हैं? शरीर में जाएगी। ये पीछे मिट्टी उठाएंगे और क्या करेंगे? तो बताओ वो आत्माएं जाएंगी कहां? स्वर्ग में जाएंगे। वो तो जाकर पहुंचा दी, मनुष्यों को विचारों को इतना मालूम नहीं है। आत्मा ने कहां जाकर के पाठ बजाया? जिनको ईश्वरीय नॉलेज का अच्छी तरह से नशा है वो तो अंदर में बहुत खुश होता होगा, क्योंकि जिसको ज्ञान का नशा होगा वो टाइम तो वेस्ट नहीं करता होगा, उसकी बुद्धि का योग तो लगता ही रहता होगा। बुद्धि का योग किससे लगता होगा है? उसकी बुद्धि का योग किससे लगता होगा? हाँ, जो ज्ञान का फूट भंडार है, कौन है? हैं? आत्माओं का बाप, जो जन्म मरण के चक्कर से न्यारा होने के कारण त्रिकालदर्शी है, तीनों काल के सत्य को जानता है, वो आत्माओं का बाप है। बाप माने वर्षा, तो कौन सा वर्षा देता होगा? निराकार आत्माओं का निराकार बाप, तो जरूर ही निराकारी ज्ञान का वर्षा देता होगा। और ज्ञान का वर्षा भी अखूट भंडारी है, तो अखूट भंडार का वर्षा देता होगा या खूटने वाला देता होगा? है, अखूट भंडारी है तो अखूट ज्ञान का भंडारी अखूट ज्ञान का भंडार देता है, कोई ले या न ले। जो लेता है वो इस मनुष्य सृष्टि में उसका उदाहरण दिया जाता है सागर से। सागर की गहराई का किसी को पता है दुनिया में? है? नहीं पता है। कहेंगे ज्ञान की अकूट गहराई का जानकार। कितने भी प्रश्नों की व्यवसार होती रहे, उन सभी प्रश्नों का काट कर देगा, अकूट भंडारी हुआ ना। तो ऐसा अकूट भंडार लेने वाले बाप के बड़े बच्चे का बुद्धि योग किससे लगता होगा है? अरे आत्माओं के बाप से ही लगता होगा। विलायत में भी योग का अर्थ है, उसके ऊपर अपना वातावरण करना या एक दो को सिखाना। क्या सिखाना है? विलायत में भी जाएगा तो क्या सिखाएगा है? अकूट ज्ञान का भंडार लेने वाला क्या सिखाएगा? विलायत वालों को जाकर के अकूट भंडारी बनाएगा? बनाएगा? अकूट भंडारी तो नहीं बनाता, लेकिन योग का भंडार तो देता है। योग कब लगेगा? ज्ञान होगा तो योग लगेगा या बिना ज्ञान के योग लगेगा? ज्ञान का भंडारी होगा तो योग का भंडारी भी होगा। जो ज्ञानी है वो ही योगी है। पहला ज्ञान किस बात का? बाप की पहचान। इसका मतलब आत्माओं का बाप शिव बाप इस सृष्टि पर आकर के पहला पहला ज्ञान क्या देते हैं, किस बात का ज्ञान देते हैं? है? मैं आत्मा हूँ, ज्ञान मिल गया है, ज्ञान मिल गया कि 84 के चक्र में आने वाली मैं कौन सी आत्मा स्पेशल हूँ, मिल गया। फिर अरे पहला पहला ज्ञान किस बात का? बाप की पहचान। तो आत्माओं का बाप जो त्रिकालदर्शी है, ट्रुथ गॉड फादर कहा जाता है, गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है, वो सच्चाई का भंडार क्या देता है, है? पहले पहले क्या देता है? अरे अभी तो बताया, जितना ज्ञानी होगा उतना बड़ा योगी हो। किस बाप का ज्ञानी है? बाप की पहचान का ज्ञानी। तो शिव बाप आकर के क्या देते हैं, है? बाप की पहचान देते हैं। तो भाई बताता है कि आत्मा की पहचान, बाप की पहचान, आत्मा बिंदु, आत्मा का बाप भी बिंदु, पहचान हो गई ना? क्यों क्यों नहीं हो गई है? हाँ, ये बाप की पूरी पहचान नहीं हुई, इसलिए मुरली में बार बार बोलते रहे, बच्चे अपनी ही टिक टिक करते रहते हैं, बाप का परिचय देते ही नहीं। बेसिक नॉलेज लेने वाले ब्रह्मा कुमार कुमारी 32 किरणों वाला चित्र सामने रख देते हैं प्रदर्शनी में या मेले मलाखड़े में, पहले पहले क्या समझाते हैं उसमें, है? ये है बाप। कौन है? ये जो शिवलिंग का चित्र रखा हुआ है, ये 32 कोण जिसके दिखाए गए हैं, ये बाप है, ये पहचान है। क्यों है? हाँ जी, जो लिंग रूप दिखाया और उसमें जो बिंदु दिखाया, उसके गुण कहाँ से आएंगे? वो तो निर्गुण निराकार गाया हुआ है, और उसके बच्चों में भी क्या कहेंगे बच्चे? मिसाल देते हैं, एक निर्गुण बालकों की संस्था है, है? निर्गुण बालकों की संस्था क्या कहेगी? मुझे निर्गुण आर्य में कोई गुण नहीं। फिर बाप क्या कहते? आत्माओं का बाप क्या कहते? बच्चे कहते मुझे निर्गुण आर्य में कोई गुण नहीं, क्योंकि आत्मा रूपी बच्चे हैं, जिनकी यादगार रुद्र रुद्राक्ष के मणके गाए हुए हैं। बाप कहते हैं नहीं बच्चे, तुम्हारे में कोई गुण हो या ना हो, लेकिन मैं देखता हूं कि तुम्हारे में जो मुझे चाहिए वो ही गुण है विशेष। क्या? बाप की पहचान का। तो बताओ, मैं आत्मा ज्योति बिंदु, मेरा बाप ज्योति बिंदु, ये बेसिक ज्ञान और एडवांस ज्ञान दोनों प्रकार के बच्चों में नहीं है, है? ये ज्ञान जो बाप के पहचानने वाले बच्चे हैं उनमें भी है, और जिन्होंने बाप को नहीं पहचाना उनमें भी ये ज्ञान है कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु, मेरा बाप भी ज्योति बिंदु। तो जो बाप के पहचान करने वाले स्पेशल बच्चे हैं उनकी स्पेशलिटी क्या हुई? हाँ, तो शिव बाप आकर के पहचान का सबसे बड़ा पॉइंट जो है उस पर जोर देते हैं। कौन सा पॉइंट है? हाँ, इस पॉइंट पर जोर देते हैं कि बाप का परिचय दो, पूरा आईडी प्रूफ दो, और जिनको निश्चय हो जाए वो लिख करके देवे। जो कहें हम बाप के प्रति पूरे समर्पित होकर रहेंगे, वो कोर्ट में जाकर के एफिडेविट लिख करके दे देवे, एग्रीमेंट लिख के दे देवे। तो क्या लिखेंगे कोर्ट में? मैं बिंदु, मेरा बाप ज्योति बिंदु, कोर्ट मान लेगा? हैं? फिर कैसे मानेगा? है, ऐसी पहचान बुद्धि में बैठे कि हम स्वयं भी पहचाने और दुनिया वालों को भी पहचान दे सके। किसकी? बाप की पहचान। कौन से बाप की पहचान है? जो मनुष्य शक्ति का बाप त्रिकालदर्शी होने के साथ साथ मास्टर त्रिकालदर्शी भी कहा जाता है। शिव बाप कहते मैं मास्टर त्रिकालदर्शी नहीं हूं, मैं सिर्फ त्रिकालदर्शी हूं, और तुम बच्चे मास्टर त्रिकालदर्शी नंबर वार बनते हो। तो अव्वल नंबर में जो मास्टर त्रिकालदर्शी बनता है वो बाप का बड़ा बच्चा हुआ ना। तो जो बड़ा बच्चा है वो अपने बाप को और अपने स्वरूप को इस 84 के चक्र में पहले पहले पहचानेगा या दूसरे बच्चे पहचानेंगे? है, बड़ा बच्चा पहले पहचानेगा। तो जैसे ये पहचान ही हो गई योग की सिद्धि, क्या? बाप की पहचान माने बाप के वर्षे की पहचान, बाप क्या वर्षा देता है? है? क्या वर्षा देता है? मुक्ति और जीवन मुक्ति। कौन सा बाप है? कौन सा बाप मुक्ति और जीवन मुक्ति देता है? देने वाले के पास खुद भी मुक्ति और जीवन मुक्ति होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? है? होनी चाहिए। तो शिव बाप के लिए ये नहीं कहा जा सकता कि वो मुक्ति का वर्षा लेता है या जीवन मुक्ति का वर्षा लेता है या जीवन मुक्त देता है। धनवान बाप होगा तो धन देगा, जमींदार बाप होगा तो जमीन देगा, होगा ही नहीं तो देगा कहां से? तो बताया कि शिव बाप जब आते हैं तो बताते हैं कि प्रैक्टिकल जीवन में जो ज्ञान का भंडार तुम बच्चों को मिलता है उसकी पहली पहली उपलब्धि है बाप की पहचान। कौन से बाप की पहचान? जिससे मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। मुक्ति माने देह के बंधन से मुक्ति। जब चाहे देह से अलग हो जाएं और जब चाहे देह की इंद्रियों से कार्य करें। इंद्रियां कंट्रोल से बाहर नहीं होनी चाहिए। इंद्रियां कंट्रोल में हो जाएं सदा काल के लिए, पूरे संगम युग में कंट्रोल में हो जाएं, या कभी हो जाएं कभी हमें कंट्रोल करें, सदा काल के लिए कंट्रोल्ड हो जाएं। तो ये सिद्धि जिसे कहते हैं इंद्रिय जीते जगत जीत, क्या कहते? इंद्रिय जीते जगत जीत, और इंद्रियों में भी काम जीते जगत जीत। तो ये जगत को या जगत के कोई हिस्से को वो ही जीत सकता है जिसने बाप की प्रॉपर्टी को पहचाना हो, बाप को पहचाना हो। जैसे निराकार बाप की निराकार ही सबसे बड़ी उपलब्धि है, ज्ञान का अखूट भंडार, ऐसे ही जो मनुष्य सृष्टि का साकारी बाप है, उस बाप से मनुष्य सृष्टि को पहले पहली कौन सी प्राप्ति होती है? है यानी कि ज्ञान तो कहा ही गया बाप की पहचान। ज्ञान मिला होगा तभी तो बाप से वर्षा मिलेगा। बाप को पहचाना ही नहीं तो बाप से वर्षा मिल ही नहीं सकता। तो बाप की पहचान तो ज्ञान से ही हुई। अधूरा ज्ञान है तो अधूरी पहचान, पूरा ज्ञान है तो पूरी पहचान। और जब पूरी पहचान हो जाती है तो क्या प्राप्ति होती है? पहले पहले योग की उपलब्धि। इसलिए उसे योगीश्वर कहा जाता है, योगियों का ईश्वर। योगियों का ईश्वर है तो स्वयं योगी होगा या नहीं होगा? है? शिव बाप को योगी कहें? है? क्यों? अगर कहें शिव बाप योगी है, आत्माओं का बाप, तो किससे योग लगाता है? है? उससे बड़ा कोई है? उससे बड़ा तो कोई है ही नहीं। वो योगी नहीं कहा जाता, वो तो क्या है? है ज्ञानी है, ज्ञान का कूट भंडारी है। वो इस सृष्टि पर आकर के हम बच्चों को नंबर वार क्या बनाता है? है? हाँ, आप समान, आप समान तो बनाता है, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी। ज्ञानी तो बनाता है, लेकिन ज्ञानी की उपलब्धि क्या है? है जो हर मनुष्य आत्मा को प्राप्त होती है, योग की शक्ति जिससे वाइब्रेशन बनता है। जिस वाइब्रेशन से पांच जड़ तत्व भी सुधर जाते हैं। ज्ञान से तो चैतन्य आत्माएं सुधरेंगी मनुष्य की, क्योंकि मनुष्य में मन होता है, संकल्प विकल्प करने वाला, सोच विचार करने वाला, अच्छे और बुरे को पहचानने वाला, जो दूसरे प्राणी होते हैं उनमें तो मन होता ही नहीं, जड़ तो शील मन होता है, वो तो विचार नहीं करेगा। तो मनुष्य आत्माओं का सुधार होता है कैसे? ज्ञान से, योग बल के द्वारा। और वो योग बल मनुष्यों का संगठन ज्यादा वाइब्रेशन बनाएगा दुनिया का, या दूसरे प्राणियों का आत्माएं योग बल का वातावरण बनाएगी? है मनुष्य आत्माएं बनाएगी, लेकिन कब बनाएगी? एक जैसे संकल्प होंगे तब बनाएंगी, या संगठन में एक का ऐसा संकल्प, दूसरे का विरोधी संकल्प, तीसरे का तीसरे प्रकार का संकल्प, चौथे का चौथे प्रकार का संकल्प। कोई संकल्प चलाता है, कोई विकल्प चलाता है, कोई अच्छे संकल्पों में रमण करता है, कोई बुरे संकल्पों में रमण करता है। अगर ऐसा संगठन है तो दुनिया का वातावरण बनेगा है? नहीं बनेगा। इसलिए बताया संपूर्ण योग की सिद्धि के लिए तरीका बताया, याद आया? बड़े थे बड़ा तरीका, बड़े थे बड़ा मंत्र, मन मना भव किस आत्मा ने कहा है? आत्माओं के बाप ने नहीं कहा? क्यों? आत्माओं के बाप को मन होता ही नहीं, वो तो सदा मन है, उसे मनन चिंतन मंथन करने की भी दरकार नहीं, क्योंकि वो तो है ही त्रिकालदर्शी। जो मनुष्य आत्माएं हैं, उन मनुष्य आत्माओं में जो बड़ा मनुष्य, बाप का बड़ा बच्चा, आत्माओं के बीच में बड़ा पार्टधारी, कैसा पार्टधारी? सृष्टि के आदि से लेकर अंत तक का पार्टधारी, ऑल राउंड पार्टधारी, जिसका पार्ट इस रंगमंच पर कभी खत्म होता ही नहीं। और मनुष्य आत्माओं का पार्ट शरीर के द्वारा, शरीर की इंद्रियों के द्वारा खत्म हो जाता है, लेकिन एक है ऐसा पार्टधारी, ऑलराउंड पार्टधारी, जिसका सच रूपी रंगमंच पर कभी पार्ट खलास ही नहीं होता, वो सदा काल का पार्टधारी है। इसलिए वो योग शक्ति का अकूट भंडारी है। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्मा के द्वारा जो चार मानसी पुत्र पैदा हुए, जो चार मुख्य धर्मों के बीज हैं, उनमें जो बड़ा ज्ञानी और बड़ा योगी था, ज्ञानेश्वर और योगीश्वर कहा गया, वो ही बच्चा है जो योगियों को कंट्रोल करने वाला है। नहीं तो शास्त्रों में कृष्ण को भी योगी राज कहा, शंकर को भी योगियों का कंट्रोलर कहा, और ब्रह्मा के बड़े पुत्र सनत कुमार को भी कहा। तो क्या योगियों के ईश्वर तीन होंगे या एक होगा? तीनों ही नाम एक ही आत्मा के पार्टधारी की याद दिलाते हैं। तो वो योगीश्वर कहो, योगीराज कहो, जो कृष्ण का नाम शास्त्रों में डाल दिया है, वो कृष्ण सतयुग का कृष्ण है या संगम युग का कृष्ण है? है संगम युग का कृष्ण है। जिस संगम युगी कृष्ण की पुरी में हम बच्चों को जाना है, योग लगा कर जाना है। योग माने अटैचमेंट, लगाओ, लगन किसके साथ? परम आत्मा। कौन है परमात्मा? परम माने परे ते परे, आत्मा माने आत्मा। आत्माओं के बीच में परे ते परे का पार्ट धारी, जिसके पार्ट को कोई क्रॉस ही नहीं कर सकता, उससे परे की स्टेज का पार्ट कोई बजा ही नहीं सकता, ऐसा पार्ट धारी तो कौन सी आत्मा है? अगर शिव को कहें तो शिव तो सिर्फ संगम युग में आता है कि चारों युगों को पांचों युगों को क्रॉस करता है, है? शिव की आत्मा चार या पांच जो भी युग हैं उन सबको क्रॉस करने वाली है या उसको किसी के साथ टैली भी नहीं किया जा सकता? क्योंकि जो चक्कर में आए उसको गिनती में लिया जाएगा, जो गिनती में ही नहीं आता वो इस चक्कर से भी षष्ठी चक्कर से सदा परे रहने वाला है, उसको टैली करने की तो बात ही नहीं किसी के साथ, वो तो तुरिया है। तो पार्टधारी आत्माओं के बीच में किसको कहें परम पार्टधारी परमात्मा, जिसका गायन गीता में भी है, परमात्मा इति उदाहत, उसे परमात्मा कहा जाता है। जो भक्ति मार्ग में गलती से समझ लिया है हरेक आत्मा परमात्मा, हरेक आत्मा परमात्मा नहीं, एक ही परे ते परे पार्ट बजाने वाली आत्मा है जिसको परमात्मा कहा जाता है। नहीं तो आत्माओं के तीन प्रकार बताए, एक क्षर क्षरित होने वाली, पतित होने वाली, और दूसरी प्रकार की आत्मा वो जो क्षरित होती ही नहीं। और तीसरी एक और भी है विशेष, जो क्षरित तो होती है, पतित तो बनती है षष्ठी रूपी चक्र में, लेकिन लेकिन पुरुषार्थ करके परे से परे की स्टेज में पहुंच जाती है। जिसकी स्टेज को कोई दूसरी मनुष्य आत्मा क्रॉस नहीं कर सकती, वो है ऑलराउंड पार्टधारी, हीरो पार्टधारी, उसको कहेंगे संपूर्ण योगी। किसके साथ योग लगाता है? है? अपने से ज्यादा पावरफुल के साथ योग लगाएगा या कमजोर के साथ योग लगाएगा? तो कौन है पावरफुल सबसे जास्ती? जो गीता में बताया, नहीं ज्ञान सद संपवित्रम ही विद्यते, ज्ञान के समान इस संसार में कुछ भी पवित्र नहीं, और पवित्रता से ही दुनिया के सारे कार्य होते हैं। तो ज्ञान सबसे पवित्र चीज है। तो बड़े से बड़ी शक्ति क्या हुई है? क्या हुई? पवित्रता। लेकिन पवित्रता का प्रैक्टिकल रूप चाहिए या सिर्फ थ्योरी चाहिए? प्रैक्टिकल रूप चाहिए। पवित्रता का प्रूफ चाहिए, तो वो प्रूफ दिखाने वाला स्वरूप हमारे भारत में है और विदेशों में भी, भारत की खुदाइयों में है और विदेशों की खुदाइयों में भी, सार्वभौम में है, और वो है शिवलिंग, जिसे कर्म करता हुआ तो दिखाया, कर्मयोगी तो है, कर्म इंद्रियों से कर्म करने वाला, लेकिन कर्म भोगी है या कर्म योगी है? कैसे? कर्म इंद्रियों से कर्म करता है, परंतु कर्म इंद्रियों का रस नहीं लेता। फिर किसका रस लेता है? जिसकी याद में है उसी का रस लेता है। त्रिकालदर्शी है तो त्रिकालदर्शी एक ही जगह बैठे बैठे सारी दुनिया का दर्शन कर सकता है या नहीं कर सकता है? हर मनुष्य आत्मा के पार्ट को जान सकता है या नहीं जान सकता? जान सकता। तो खुशी का भंडार रहेगा या दुखी रहेगा? है? आनंद का सागर कहा जाता है, सुख का सागर कहा जाता है। तो जो है ही सुख का सागर, उसी से सुख की प्राप्ति हो सकती है। जो सुख और दुख दोनों से परे है, उससे सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। हाँ, एक आत्मा है, जो ज्ञान में ही सुख लेती है, उसको कहा जाता है नारायण। नार माने ज्ञान जल, आयन माने घर। कहा आनंद से रहता है? ज्ञान जल में आनंद से रहता है, क्षीर सागर। भले सर्प सर्पिणियों की शैया पर दिखाया गया है, उसको कोई तलख नहीं होती, कोई बेचैनी नहीं होती, नहीं तो विकारी मनुष्य होगा और ह्यूमन सर्प सर्पणियों के बीच में रहेगा तो तलख होगी या नहीं होगी? है? नहीं होगी? होगी। तो वो स्टेज दिखाई गई है परमात्मा की, इसलिए परमात्मा शब्द बाद में बोला जाता, परमपिता शब्द पहले बोला जाता। जैसे शिव का नाम पहले लेते हैं, शंकर का नाम बाद में लेते हैं। तो बताया एक है आत्मा की बात और दूसरी है पांच तत्वों के संघात मिट्टी से बने शरीर की बात। जो सत्य कहा जाता है वो इस संसार में किसे सत्य कहेंगे? गीता में तो कह दिया है ना सते विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। माने सत्य का इस संसार में कभी अभाव होता ही नहीं। जो सत्य है वो इस संसार में सदैव है ही है। सत्य माने गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड। तो इस संसार में से सत्य कभी खलास होता है? है? नहीं खलास होता। और सत्य एक होता है या अनेक होता है? सत्य एक ही होता है। ऐसे नहीं 500 700 करोड़ सत्य हो जाएंगे। जो एक सत्य है वो सदाकाल है, आज भी है, कल भी रहेगा और पास्ट में भी सदाकाल था। वो काल से अतीत है। काल माने समय चक्र, जिसे कहा जाता है कालों का काल, महाकाल, जिसको कोई काल खा नहीं सकता। सारी दुनिया को काल खाएगा परंतु उसे काल नहीं खा सकता। इसलिए शास्त्रों में भक्ति मार्ग में ना समझ होने के कारण शंकर को दिखाई दिया। शंकर संपन्न रूप है या पुरुषार्थी रूप है? पुरुषार्थी को संपन्न कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो शास्त्रकारों को तो पता ही नहीं है कि वो सत्य क्या है। जो सत्य सारी दुनिया में सार्वभौम रूप में पाया गया, देश विदेश की खुदाइयों में पाया गया, परंतु उसके अर्थ को सार्थक किसी ने नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि बाप का परिचय बाप ही दे सकता है, बाप के सिवाय कोई बाप का परिचय नहीं दे सकता। जैसे आत्माओं का बाप का परिचय आत्माओं का बाप ही देता है, वैसे ही मनुष्य सृष्टि के बाप का परिचय कौन देता है? हैं? मनुष्य सृष्टि का बाप ही दे सकता। क्यों? शिव बाप ने परिचय नहीं दिया? शिव बाप ने मनुष्य सृष्टि के बाप का परिचय नहीं दिया? अरे दिया या नहीं दिया? दिया। अगर कहें कि दादा लेखराज ब्रह्मा की वाणी के द्वारा परिचय तो पहले ही दे दिया, बता दिया है लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ, जो नर से नारायण नारी से लक्ष्मी बनते हैं, आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए जब इनका जन्म हुआ, तो परिचय नहीं दे दिया है? परिचय दिया या नहीं दिया? दिया। फिर किसी ने पहचाना? कब पहचाना? किसके द्वारा पहचाना? हैं?
अरे
वो मीडिया कौन बना जिसके द्वारा पहचाना? मनुष्य शक्ति का बाप खुद ही मीडिया बनता है, तब मनुष्यों को पता चलता है। नंबर वा पुरुषार्थ अनुसार निश्चय होता है। पहले पहले पक्का निश्चय किसको होता है? पांच सौ सात सौ करोड़ मनुष्य आत्माओं में से मनुष्य सृष्टि का बाप कौन है, कैसे पार्ट बजाए रहा है, कहाँ पार्ट बजाए रहा है, इस बात का निश्चय पहले पहले किस आत्मा को होता है? ठीक है, बाप दादा किसी के पार्ट को बोर्ड पर लिखकर कागज पर लिखकर नहीं बतावेंगे। हर एक को अपने पार्ट का परिचय स्वतः होगा या कोई दूसरा देगा? है स्वतः ही होगा। जैसे दादा लेखराज ब्रह्मा को पक्का निश्चय बैठ गया कि मैं इस सत्य रूपी रंगमंच पर कौन सी आत्मा हूं, पक्का निश्चय बैठा या नहीं बैठा? क्या बैठा? कि मैं इस सत्य रूपी रंगमंच पर कौन सी आत्मा है? मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता मैं हूं, मुझे प्रिंस कृष्ण के रूप में इस सृष्टि पर पहले पहले जन्म लेना है सतयुग में। उनको ये पक्का निश्चय बैठा। क्यों? उस समय जिसने उनके साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन दिया और वो क्लैरिफिकेशन देने के लिए और जो भी तीन मूर्तियों में से जो भी मूर्तियां निमित्त बनी उनको अपने पार्ट का पहले निश्चय नहीं हुआ, लेकिन कृष्ण वाली आत्मा को पक्का निश्चय हो गया कि मुझे कृष्ण के रूप में पार्ट बजाना है और संगम में मेरा पार्ट ब्रह्मा का है, सफेद पोष का। किस आधार पर बैठा ये निश्चय? प्रैक्टिकल में उन्होंने अनुभव किया था साक्षात्कार का, दूसरी कोई महात्मा ने तो साक्षात्कार का अनुभव नहीं किया था, तो उनको पक्का निश्चय बैठ गया क्योंकि वो भक्ति का पार्ट बजाने वाली आत्माओं में अव्वल नंबर आत्मा है कि नंबर वार है? अव्वल नंबर आत्मा है। इसलिए भक्ति के आधार पर उनको पार्ट का निश्चय हो गया। ऐसे ही ब्रह्मा ज्ञान चंद्रमा की बच्ची जिसे शास्त्रों में हिमालय राज कहा, वो हिमालय राज की पुत्री का नाम पार्वती। पार्वती वाली आत्मा को भी अपने स्वरूप का निश्चय कैसे होता है? भक्ति के आधार पर होता है या ज्ञान के आधार पर होता है? है? भक्ति के आधार पर होता है। जो बोला तुम सब हो नंबरवार भक्तियां, तुम सब हो नंबरवार सीताएं, तुम सब हो नंबरवार द्रौपदियां, देखो अव्वल नंबर शीतला देवी का पार्ट बजाने वाली सीता कौन हुई? लक्ष्मी वाली आत्मा हुई। अव्वल नंबर में ध्रुव पद पाने वाली आत्मा कौन हुई? जिसने पहले पहले ही अपने पद का साक्षात्कार कर लिया। ज्ञान के आधार पर बुद्धि से नहीं पहचाना, किस आधार पर पहचाना? साक्षात्कार के आधार पर पहचाना। जैसे संदेशियां साक्षात्कार में जाती थी, ऐसे वो आत्मा भी साक्षात्कार में जाती रही। और साक्षात्कार के आधार पर खुशी प्राप्त करती रही। तो उस आत्मा का भी फाउंडेशन क्या हुआ? भक्ति, ज्ञान या वैराग्य? है भक्ति। तो यही कहेंगे कि भक्ति के रूप में जो पार्ट बजाने वाली आत्मा है, तुम सब भक्तियां हो, उनमें नंबर वन भक्त कौन हुई? है नंबर वन भक्त आत्मा? है ब्रह्म। अगर नंबर वन आत्मा ब्रह्म है तो उसको जन्म देने वाली आत्मा जो जन्मदात्री है वो माता के रूप में है या पिता के रूप में है? माता के रूप में। और जो माताएं होती हैं उनमें भक्ति भावना ज्यादा होती है या ज्ञान ज्यादा होता है? भक्ति भावना ज्यादा होती है। तो जो नारी से लक्ष्मी का पद पाने वाली है उसमें भक्ति भावना ज्यादा हुई या ज्ञान ज्यादा हुआ? भक्ति भावना ज्यादा हुई। और भावना के आधार पर ही भाव प्रधान विश्व रचि राखा, उस भाव के अनुसार जो जस करे सो तस फल चाखा। भाव की प्रधानता के आधार पर जो जैसा कर्म करता है वैसी प्राप्ति करता है। भावना छोटी चीज है या बड़ी चीज है? बुद्धिमानों का बाप कौन है? बुद्धिमान शिव बाप। बुद्धिमानों का बुद्धिमान जिसको गीता में कहा इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं, इंद्रियों से प्रबल मन है, मन से प्रबल बुद्धि है। क्या मनुष्य में बुद्धि होती है कि नहीं? तो बुद्धिमान मनुष्यों में से कोई मनुष्य होगा कि नहीं होगा जो बुद्धिमान कहा जाए? जैसे गीता में भी कहा बुद्धिमान नर अर्जुन। कौन बुद्धिमान? वो नर जो नर से नारायण बनने की प्रक्रिया सीख लेता है। राजयोग का जानकार बन जाता है। अर्जुन माने ही अर्जन करने वाला। किस बात का अर्जन करने वाला? ज्ञान धन के आधार पर सदभाग्य का अर्जन करने वाला। ईश्वर ने जो ज्ञान दिया उस ज्ञान के आधार पर जन्म जन्मांतर का सत्य माने श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त किया। ज्ञान के आधार पर प्राप्त किया या मनमत के आधार पर या मनुष्य मत के आधार पर? ज्ञान के आधार। मनमत कहे तो मनुष्य मत ही हो गई, और मनुष्यों की मत कहे जिन मनुष्यों में बड़े बड़े दुनिया में माने जाते हैं इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि धर्म पिता हैं, तो वो भी इस सृष्टि पर अधूरे पार्टधारी हैं,
या अलाउंड पार्टधारी है।
इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट तो 84 जन्मों का पार्ट बजाते ही नहीं, तो वो तो है ही अधूरे पार्टधारी। जो अधूरे पार्टधारी हैं वो सच्चे हैं या झूठे हैं? वो सब झूठे हैं। तो सत्य क्या है? जो ऑलराउंड पार्टधारी है उसे हम सत्य कहें है? हाँ, वो अज्ञानी नहीं बनता है? अज्ञानी माने असत्य नहीं बनता है?
बनता है।
फिर सत्य है या असत्य है सदाकाल? सदाकाल के लिए उसे सत्य कहें या असत्य कहें? कैसे
सत्य करके सत्य बन जाता है? सत्य करके सत्य बन जाता है।
पुरुषार्थ तो तब करेगा जब पुरुष स्वरूप आत्मा को पहचानेगा। पुरु माने पुरी शरीर रूपी, क्ष माने शयन करने वाला। शरीर रूपी पुरी में आराम से शयन करने वाली आत्मा, उसको कहते हैं पुरुष। तो अंतिम जन्म में उस आत्मा को ज्ञान रहता है कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। ये ज्ञान होता है? है? नहीं होता है। ये ज्ञान पहले पहले किससे मिलता है? शिव बाप से मिलता है कि मैं आत्मा ज्योतिबिंदु, मेरा बाप भी ज्योतिबिंदु। ये ज्ञान प्रैक्टिकल में शिव बाप से मिलता है। शिव बाप को तो शरीर ही नहीं है अपना, है? किसे? मनुष्य सृष्टि के बाप से। हाँ, ब्रह्मा बाबा से। यज्ञ के, हाँ, यज्ञ के याद में लाल लाइट के गोले को याद करते थे। लाल लाइट के गोले में ज्योति बिंदु नहीं याद करते थे। फिर ये ज्ञान किसके द्वारा मिला है? जो ज्ञान की देवी कही जाती है सरस्वती, क्या उसके द्वारा ये ज्ञान मिला? लेकिन वो ज्ञान की देवी वाचा की देवी है, वाक देवी कही जाती है। क्या? वाचा की देवी माने वाचा के आधार पर बता तो दिया कि हम आत्मा ज्योतिबिंदु तो हमारा बाप भी ज्योतिबिंदु, लेकिन क्या प्रैक्टिकल में वो आत्मा स्वयं ज्योतिबिंदु स्वरूप में जीवन रहते रहते टिक सकी कि सूक्ष्म शरीरधारी बन गई? है? सूक्ष्म शरीरधारी बन गई माने देहभान प्रबल हो गया या आत्मा प्रबल बन गई? है? देहभान प्रबल बन गया। क्यों? जब इतनी ज्ञानी तू आत्मा थी, उस आत्मा ने
मन चिंतन मंथन का जो मूल पॉइंट है,
निराकार ज्योतिबिंदु आत्माओं का बाप कौन, उसके स्वरूप को पहले पहचान लिया और बताए दिया,
तो वो आत्मा तो सर्वश्रेष्ठ होनी चाहिए। है
मनन चिंतन मंथन में ओम राधे मम्मा आगे थी या ब्रह्मा बाबा आगे थे? है मम्मा आगे थी, लेकिन जो भी मनन चिंतन मंथन किया मम्मा ने वो वाचा तक सीमित रहा या प्रैक्टिकल जीवन में भी धारण कर लिया? है वाचा तक सीमित रहा, और शरीर का जब अंत हुआ तो अंतमते सो गते देवान में हुई या आत्माभिमान में हुई? क्यों? जब आत्मा के स्वरूप को जान लिया, आत्मा के बाप को जान लिया, तो देवान में क्यों शरीर छूटा? है क्योंकि जिसको फॉलो करते व्यवहार करने वाली थी जीवन में, किसको फॉलो करती थी? ब्रह्मा को फॉलो करती थी, दादा लेखराज को कदम कदम पर फॉलो करती थी, उससे आगे तो नहीं जा सकती। है जो फॉलो करने वाला है, जिसको फॉलो करेगा, जिसके कदम पर चलेगा, तो उससे आगे निकल जाएगा क्या? पीछे ही रहेगा ना। तो ब्रह्मा ने बाप को नहीं पहचाना, तो फॉलो करने वाली जगदम्बा सरस्वती ओम राधे ने भी बाप को नहीं पहचाना, और न पहचानने के कारण अंतिम श्वास तक भी निराकारी आत्मा की स्टेज को प्राप्त नहीं कर सकी। तो कोई आत्मा तो होगी जो निराकारी स्टेज को पहले पहले प्राप्त करे। जो बोला प्रैक्टिस का स्वरूप एक सेकंड में आकारी, एक सेकंड में निराकारी, एक सेकंड में साकारी, क्या कहा? जब चाहे उसी सेकंड में साकार इंद्रियों से कर्म करे और जरूरत पड़े तो एक सेकंड में साकार इंद्रिय का आकर्षण छूट जाए, एक सेकंड में साकारी स्टेज को त्याग कर निराकारी ज्योति बिंदु स्टेज प्राप्त कर ले, और एक सेकंड में मनन चिंतन मंथन की आकारी स्टेज में आ जाए, ऐसी अवस्था प्राप्त करने वाली आत्मा को कहेंगे संपूर्ण निराकारी स्टेज प्राप्त करने वाली आत्मा। सदाकाल के लिए नहीं, निरंतर के लिए नहीं, लेकिन आत्मिक स्टेज को प्राप्त करने वाली या नहीं प्राप्त करने वाली, प्राप्त करने वाली कहा जाए। निशानी क्या बताई? अभी बताई, एक सेकंड में साकारी, एक सेकंड में निराकारी, एक सेकंड में आकारी। तो कौन हो सकता है? कौन?
साकार बाप,
साकार बाप, साकार बाप बता देना आसान कि साकार बाप। लेकिन बाप ने कहा बुद्धिमान बाप के बच्चे बिना प्रूफ और प्रमाण के कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं होते। तो कोई कहे कि आप तो ऐसे ही बोल रहे हैं, आपका लगाव लग गया है,
इसलिए आप बोल रहे हैं। प्रूफ क्या है? हाँ, अब व्यक्तवाणी में ही बोल दिया कि बाप दादा जो तुम बच्चे कहते हो वो बाप दादा का असली स्वरूप जो तुम बच्चे अभी तक समझते हो वो असली स्वरूप नहीं है। किसे समझते हो बाप दादा? इस सच्चे रूपी रंगमंच पर प्रैक्टिकल में पार्ट बजाने वाले असली रूप में बाप दादा तुम बच्चे किसे समझते हो, किन्हें समझते हो? अरे हैं? राम वाली आत्मा को बाप समझते हो, क्योंकि मुरली में ही 20 बार आया राम बाप को कहा जाता है और कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। तो जो बच्चों में बड़ा पत्ता पहला पत्ता है मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता बड़ा भाई वो हो गया ब्रह्मा की सोल, कृष्ण की सोल, और उसका बाप जन्मदाता राम वाली आत्मा वो हो गई बाप। तो क्या बाप दादा का यही सच्चा स्वरूप है? क्या और कोई भी है? हैं? और कोई क्या हैं? आत्मिक स्टेज में निराकार आत्माओं का निराकारी बाप शिव ज्योति बिंदु बाप प्रैक्टिकल पार्ट बजाता है मुकर्रर रथ में आकर या नहीं बजाता? बजाता तो है, प्रैक्टिकल पार्टधारी भी है बाप, लेकिन उसका बड़ा बच्चा कौन? आत्मा रूपी जो भाई भाई हैं, उन भाई भाइयों के बीच में बड़ा बच्चा कौन? राम बाप वाली आत्मा। तो बड़ा बच्चा पहले अनुभव करेगा आत्मिक स्टेज का, एक सेकंड में आकारी, एक सेकंड में निराकारी, एक सेकंड में साकारी, या कोई दूसरी आत्मा पहले अनुभव करेगी? है? उसकी डेट बता दी व्यक्तवाणी में। क्या डेट बताई थी, याद है? हैं? 5 दिसंबर, 5 दिसंबर को पहली बार जो असली रूप में यथार्थ रूप में बाप अब्बल नंबर और अब्बल नंबर दादा बड़ा भाई आत्मिक स्टेज के हिसाब से कौन हुए? शिव बाप आत्माओं का बाप और उसका बड़ा बच्चा मनुष्य सृष्टि का बाप, आत्माओं में बड़ा पार्टधारी, हीरो पार्टधारी वो हुआ दादा। आत्मा आत्मा भाई भाई, उन भाई भाइयों के बीच में बड़ा भाई कौन है? मनुष्य शक्ति का बीज राम वाली आत्मा। तो जो राम वाली आत्मा है वो बड़ा भाई होने के हिसाब से बाप का वर्षा पहले पहले प्राप्त करेगी या बाद में प्राप्त करेगी? भारतीय परंपरा में भी क्या चलता रहा राजाओं में, राजाओं ने अपना वर्षा राजा ही का किस बच्चे को दिया? बड़े बच्चे को दिया। इसलिए गीता में भी आया है कि मैं जो रास्ता अपनाता हूँ मेरे रास्ते का ही ये मनुष्य अनुगमन करते हैं। सारी परंपराएं दुनिया की कहाँ से शुरू होती है? संगम युग से शुरू होती है। अच्छी परंपराएं भी यहाँ से शुरू होती है और खराब परंपराएं भी यहाँ से शुरू होती है। तो बताया कि मनुष्य विचारों को नहीं मालूम है कि वो आत्मा जो पितर है, तुम ब्राह्मण बच्चे भी मनुष्य हो या नहीं? मनुष्य हो, लेकिन ब्राह्मण हो, ब्रह्मा की औलाद प्रैक्टिकल में। इसलिए मनुष्यों को पता नहीं, क्या नहीं पता है, इतना नहीं मालूम है कि वो ब्रह्मा की आत्मा का क्या असर होता है, कहां जाती है, गौ हट्टी, हट्टी स्वभाव वाली गौ में प्रवेश करने के बाद आखिरी वो देह अभिमान का पार्ट बजाने वाली माता, तो क्या महाकाली में पार्ट बजाने वाली माता वो जगदम्बा, और उसमें प्रवेश करने वाली आत्मा ब्रह्मा ज्ञान चंद्रमा, ब्रह्मपुत्र नदी जब गौहाटी में आती है उसके बाद कहां जाती है? अरे अभी तो बताया, बाप आज की दुनिया में भी माताओं से प्रभावित नहीं होता, किससे प्रभावित हो जाता है? बच्ची से प्रभावित हो जाता है। तो कौन बच्ची हुई? नदी के रूप में ब्रह्मपुत्री नदी। ब्रह्मपुत्री नदी चंद्रवंशी राधा कही गई है। वो चंद्रवंशी राधा जब ये फैसला कर लेती है कि मुझे चंद्रवंश को छोड़ करके कौन सा वंश अपनाना है, सूर्य वंश अपनाना है, तो ब्रह्मा की सोल भी उसी तरफ चली जाती। कहाँ चली जाती है? सूर्य वंश की तरफ जाती है। इसलिए जहां कहीं भी सतयुग में जाके जन्म लेगी, कौन से वंश की कही जाएगी? सूर्यवंशी कही जाती। तो मनुष्यों को इतना मालूम नहीं रहता है कि वो आत्मा कहां जाकर के पहुंची। जिनको अच्छी तरह से नॉलेज का नशा है, उनका बुद्धि योग लगा रहता है पाप से। विलायत में भी योग का अर्थ वातावरण बनाने की बात है, और वातावरण के आधार पर एक दूसरे को सिखाने की बात है, बोल बोल के आधार पर, भाग दौड़ के आधार पर। अभी तक ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने भी बहुत सेवा की। एडवांस कहे जाने वाले ब्राह्मणों ने भी बहुत सेवा की। क्या संसार में लहर फैली? राजयोग का प्रभाव निकला है? नहीं निकला। कारण क्या हुआ है? अरे कारण हुआ योग का सही अर्थ नहीं समझा। किससे योग लगाना है? बेसिक ब्राह्मणों से पूछो तो कहेंगे निराकार से। मैं आत्मा ज्योति बिंदु, मेरा बाप ज्योति बिंदु, उसको याद करो। ब्रह्म वाक्य मुरलियों की गहराई में जाते हैं तो पता लगता है साकार में निराकार को याद करना ही एक्यूरेट याद है। तो साकार को पहचानेंगे तभी याद करेंगे, या बिना पहचाने कोई भी साकार में बिंदु को याद करेंगे? पहले पहचानना। तो योग का अर्थ क्या हुआ? किसके साथ योग है? अरे त्रिमूर्ति में दादा लेखराज ब्रह्मा की मूर्ति के साथ योग, विष्णु मूर्ति जो प्रैक्टिकल पार्ट धारी है उसके साथ योग, या याग का पुरुषार्थी शंकर के साथ योग, किसके साथ योग? शिव बाबा के साथ योग, क्यों? जिससे लगन लगाएंगे उसी के जैसे बनेंगे ना, तो लगाव किससे लगाना है? अटैचमेंट बुद्धि का किसके साथ होना चाहिए? ऐसे तो बता दिया ब्रह्मवाक्य मुरली में, सबसे अच्छा है नारायण को याद करो। तो कैसे याद करें? चित्र में छपा हुआ है, जड़ चित्र को याद करें है? चैतन्य चित्र का कैसे पता चले? चैतन्य चित्र नारायण बना है, बन रहा है, हम भी तो बन रहे हैं, हम बच्चे नहीं बन रहे हैं, हम बच्चे भी तो संपूर्ण बन रहे हैं। फिर पता कैसे चले कि ऊंचते ऊंच भगवंत कौन है? है? क्या ज्ञान? नंबर वन का पता कैसे चले? कैसे पता चले कि ये नंबर वन है ये नंबर दो है?
उन्होंने ये लक्ष्मी नारायण को याद करो, वो लक्ष्मी नारायण को नहीं याद करना। मुरली में बोला है ना, ये लक्ष्मी नारायण को याद करो, वो लक्ष्मी नारायण को याद नहीं करना।
वो माने सतयुग के लक्ष्मी नारायण को याद नहीं करना, ये लक्ष्मी नारायण को याद करना जो नर से नारायण इसी जन्म में बनते हैं। तो पता नहीं है ना कौन है लक्ष्मी नारायण। पक्का विश्वास पैदा होगा, निश्चय बुद्धि बनेंगे तभी ही तो याद करेंगे। क्या आज निश्चय बुद्धि और कल अनिश्चय बुद्धि है? मुरली से, कागज की मुरली से पता चला, जिसे थर्ड क्लास मुरली कहा। वाह भाई, ब्रह्मवाक्य की मुरली में क्या बोला? कागज की मुरली है थर्ड क्लास, टैप रिकॉर्डर है सेकंड क्लास, और डायरेक्ट मुख से जो सुनते हो, सन्मुख सुनते हो, वो क्या है? फर्स्ट क्लास मुरली। तो थर्ड क्लास मुरली से पता चलेगा है? तो अब वो फर्स्ट क्लास मुरली मिले कैसे?
क्षेत्र में जब प्रत्यक्ष हुआ
है,
क्षेत्र में जब प्रत्यक्ष हुआ,
आप व्यक्ति ही तो बैठे हैं। आज की दुनिया में तो ज्ञानी उसे माना जाता है पंडित सोई जोई गाल बजाबा। क्या विद्वान पंडित उसी को लोग समझते हैं जो भाषण देना बहुत अच्छा जानता है, गाल बजाना बहुत अच्छा जानता है। देखो, प्रधानमंत्री बना के बैठा दिया, क्या खासियत है? अच्छा भाषण देता है ना, नेहरू जी को प्रधानमंत्री बना के बैठा दिया, क्या खासियत थी है? जो विरोधी लोग होते थे पीछे से बहुत बुराई करते थे, नेहरू जी के सामने जब जाते थे तो पलट जाते थे। ये है आत्मा की परिवर्तन शक्ति, वातावरण को परिवर्तन कर देना। और ये वातावरण को परिवर्तन करना उसी के आधार पर धर्मपिताएं प्रत्यक्ष हुए थे। उसी के आधार पर जो अव्वल नंबर धर्मपिता गाया हुआ है संसार में, अल्लाह अव्वल दीन, वो भी प्रत्यक्ष होता है। कौन सी शक्ति के आधार पर? वाइब्रेशन को पलटने की शक्ति के आधार पर। वाइब्रेशन को बांध लेता है। प्राचीन काल में द्वापर युग में ऋषि मुनि होते थे, उनके आश्रम में शेर और बकरी बताते हैं एक घाट पानी पीते थे। ऐसा वातावरण कैसे बन गया है? ऋषि मुनियों के मानसिक वाइब्रेशन के आधार पर। ये मनसा का वाइब्रेशन वो चीज है जो 16,000 गोपियों में प्रसिद्ध है। क्या भूल गए? अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछे। कि 16,000 की संख्या में ही क्यों बांधा गया है? ये क्यों नहीं कहा 9,00,000 से पूछो है?
हाँ,
उनको गोप गोपी कहा गया, गुप्त संबंध जोड़ा। जोड़ माने योग, लगाव, अटैचमेंट, लगन लगाई बुद्धि की। और बुद्धि की लगन कब लगती है? है लगाव कैसे पैदा होता है? अरे गीता में भी बता दिया, संगात संजायते कामा। क्या संग करने से कामना पैदा होती है? कि और याद करें, और याद करें, और याद करके और अतीन्द्रिय सुख लेंगे लें। योग की ऊंचाइयों में ही चढ़ते चले जाएं, गिरने की बात ही नहीं। जैसे राधा कृष्ण हैं लक्ष्मी नारायण के नीचे खड़े हुए, दूसरी पीढ़ी नई सृष्टि की क्या कर रहे हैं? दृष्टि योग का सुख ले रहे हैं। दृष्टि आंखें ये देह का अंग है या नहीं है? और देह विनाशी, देह विनाशी तो इंद्रियां भी विनाशी, और इंद्रियों का रस भी विनाशी। तो 16 कला संपूर्ण राधा कृष्ण पहले जन्म में, जब अगले जन्म में जाके जन्म लेंगे या उनकी प्रजा जन्म लेगी तो कम कला वाली बनेगी या चढ़ती कला वाली बनेगी? क्यों? क्योंकि देह का सुख लिया। ये कलातीत स्टेज नहीं है, जो अतीत की स्टेज का सुख देने वाला कहा जाता है कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, कलाओं से परे का सुख देने वाला, अतीन्द्रिय सुख देने वाला, पहले स्वयं कमाई करे तब दूसरों को देने वाला बने, पहले स्वयं इस स्टेज में टिके। कौन सी स्टेज कलातीत मना अतीन्द्रिय सुख की स्टेज में टिके, जो शिव के मंदिरों में दिखाई गई है, परम पूजनीय स्टेज, कर्मेंद्रियों से कर्म भी कर रहा है लेकिन स्टेज कैसी है आत्मा की है, इंद्रियों का रस लेने की स्टेज है, इंद्रियों से परे की स्टेज में है, उसको कहेंगे अतीन्द्रिय सुख, इंद्रियों से अतीत का सुख। तो बताया योग का अर्थ पता नहीं है, योग है क्या, योगी कैसे बने, योग से प्राप्ति क्या है और योग किससे लगाना है, दुनिया में भी योग सिखाते आए गुरु लोग, अनेक प्रकार की योग सिखाए, उनके तरीके तो अथाह हैं, परंतु ये है यात्रा का योग। कौन सी यात्रा, उनकी है जिस्मानी यात्रा और हमारी है रूहानी यात्रा। रूहानी यात्रा माने कहाँ तक पहुंचना है, अरे सवेरे याद में बैठते हैं, बैठते हैं ना, पक्का संकल्प लेते हैं ना कि टिके रहेंगे एक ही याद में, एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, लेकिन दो चार क्षण में ही कहां से कहां पहुंच जाती है बुद्धि, अरे एक में टिके रहते हैं या भटक जाती है बुद्धि, क्यों भटक जाती है, यात्रा करते करते कहां पहुंच जाते हैं, जाना है ऊपर, जो तरीका बताया गीता में भी, उद्धरेत आत्मा आत्मानम नात्मानम अवसादयेत उत्त हरेत, उत्त माने ऊपर, हरेत माने हरण करके ले जाए, मन बुद्धि रूपी आत्मा ज्योति बिंदु आत्मा को हरण करके, जबरियन हरण करके ले जाए, कहां उत ऊपर की ओर ले जाए, नीचे न जाने दे, नीचे बने भ्रष्ट इंद्रियों की स्मृति में न जाने दे। भ्रष्ट माने नीचे, श्रेष्ठ माने ऊपर। अवनति न होने दे ज्योति बिंदु आत्मा, मन बुद्धि रूपी आत्मा नीचे न जाने पाए। आत्मना आत्मानम, मन बुद्धि के द्वारा ज्योति बिंदु आत्मा को ऊपर हरण करके ले जाए। कैसे ले जाएंगे? क्यों नीचे आ जाती है बार बार? 80 साल हो गए है? योग योग करते करते 2500 साल से योग लगाते आए गुरुओं के अनुसार। अभी भगवान बाप आ गया, अभी भी योग योग कर रहे हैं, लेकिन बुद्धि योग ठहरता है, है? ठहरता है? क्यों नहीं ठहरता? कहीं गलती है या नहीं है? क्या गलती है? है?
संकरण
क्या गलत रास्ता है?
संकरण का जो संकरण में कला जो नीचे
है, ईश्वर यंत्र का रंग लगा हुआ है, ईश्वर यंत्र का रंग लगा हुआ।
श्रेष्ठ जन्म जिन जिन आत्माओं का संग किया है वो रील में आत्माएं संकल्पों में घूम रही हैं, अपना हिसाब किताब लेने के लिए। तो क्या करना है? है? अभ्यास न तो कौनते है वैराग्य न च गृह्यते। बार बार अभ्यास करो। किस बात का? एक शिव बाबा कल्याणकारी, दूसरा कोई नहीं कल्याणकारी, सब स्वार्थी। अपने रथ के लिए मरने वाले, अपने स्वार्थ की तरफ खींचने वाले हैं। एक शिव बाबा ही है जो बाप समान कल्याणकारी बनता है प्रैक्टिकल में। क्या कहा? अपना नुकसान भी नहीं देखता, बच्चों का फायदा देखता है। क्या नुकसान नहीं देखता? घर में आग लगी हुई हो, गांव का गांव जल रहा हो, और बच्चे उस आग में झुलस रहे हैं, बाप जानेगा तो भाग जाएगा या बचाएगा? है? बचाएगा, बचाएगा तो आग की चपेट में नहीं आ जाएगा? है? फिर यहां कौन सी आग है? है? सारी दुनिया में काम आग नहीं जल रही है, और ये आग बढ़ती ही जा रही है। 500 करोड़ भी आत्मा भी बाप का बच्चा है, है या नहीं है? उसको भी उस आग से बाहर लाना है या जलने दो? है? बाहर लाना है। और बाप क्या कहते? आत्माओं का बाप क्या कहते हैं? अमृत छोड़ बिख काए को खावे, बच्चों के बचाने के चक्कर में जैसे डूबता हुआ कोई होता है उसको बचाने के लिए कोई गोता लगाता है तो डूबने वाला क्या करता है? है? उसी को पकड़ लेता है और चढ़ जाता है उसके ऊपर। तो यही हालत है, बाप तो बाप है, जैसे शिव बाप कल्याणकारी है, परंतु वो तो साफ कह देता है मैं कल्याणकारी तो हूं लेकिन मास्टर कल्याणकारी नहीं, मैं सिर्फ थ्योरी बताता हूं, प्रैक्टिकल में किसको करना है, मुझे करना है या तुम बच्चों को नंबर वार करना है? है, तुम बच्चों को नंबर वार करना है। तो जिनको करना है क्या वो काम करेंगे तभी तो बाप समान बनेंगे। काम के आधार पर नाम पड़ते हैं। तो सुप्रीम सोल सेवा का नाम क्या है? अरे पूछने वाला साथ ही साथ बोलता भी जा रहा है। सुप्रीम सोल का नाम क्या है? मेरी आत्मा का ही नाम शिव है। शिव माने कल्याणकारी। तो जैसा बाप वैसा बच्चा भी चाहिए। है बनाएगा कि बना दिया कौन बन गया?
साठ सत्तर बन गया।
अरे तब तो राजधानी बहुत पहले स्थापन हो गई होगी। हैं? बाप तो कहते हैं मैं जब आता हूँ तो मेरी निशानी आने की है कि आने के साथ ही साथ धक्क से तुम्हारी राजधानी स्थापन कर देता हूँ। आप कहते हैं 70 की राजधानी स्थापन हो गई।
बच्चा जब बैठा हुआ है तो किसको बुद्धि में बैठा हुआ है
या विष्णु की तरह खड़ा हुआ है? है पुरुषार्थी बैठा हुआ अच्छा, खड़ा हुआ अच्छा, चलता हुआ अच्छा, दौड़ता हुआ अच्छा, उड़ता हुआ अच्छा, उड़ती कला निशानी क्या? उड़ती कला की निशानी क्या? अरे उड़ती कला माने उड़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। क्या सर्व का भला करने में लगातार लगे हैं तो उड़ती कला, नहीं लगे हैं स्वरथ स्वार्थ के लिए लगे हुए हैं, ज्यादा टाइम दे रहे हैं तो अपना भला या सर्व का भला में लगे हैं? है? सबका भला में लगे हैं, अपना भला में लगे। तो बाप समान बनने का मतलब ये है जैसे शिव बाप मनुष्य मात्र तो छोड़ो प्राणी मात्र का कल्याणकारी है। जो भी प्राणी है उन सब में आत्मा है या नहीं है? है? सभी में आत्मा है, सभी आत्माओं का कल्याणकारी है। यहाँ तक के पेड़ पौधों में भी आत्मा है।
सांप अगर काटेंगे तो उसको नहीं मारेंगे, सांप अगर काटेंगे तो उसको नहीं मारेंगे, आत्मा है।
पहले अपने कुल का उद्धार या अपनी जाति का उद्धार या दूसरों का उद्धार? पहले अपने परिवार को देखेंगे या दूसरों को देखेंगे? तो अपने परिवार का उद्धार हो गया। बहुत ही लोग हैं उनका संसार में बड़ा मान है, सभी धर्म वाले मान देते हैं, भारत में हिंदुओं ने भी बड़ा मान दिया। कितना मान दिया? इतना मान दिया कि और अवतार तो पता नहीं उनकी हिस्ट्री क्या है, उनकी हिस्ट्री जानते ही नहीं, हिस्ट्री का कोई प्रूफ ही नहीं है, लेकिन महात्मा बुद्ध की हिस्ट्री को जानते हैं। और हिस्ट्री जानते हुए भी ये भी जानते हैं कि वो मनुष्य हुआ, हिस्ट्री में हुआ, लेकिन भगवान का अवतार मान लिया। बुद्ध को क्या मान लिया? भगवान का अवतार मान लिया। कौन सा विशेष ज्ञान का पॉइंट उन्होंने बताया? अहिंसा परमो धर्म। मुसलमानों ने आक्रमण किए, हाथ उठा दिए, अहिंसा परमो धर्म, उनके ऊपर आक्रमण नहीं किया, हाथ उठा दिए, जैसे चलाओ वैसे चलेंगे। तो ये अच्छी बात हो गई या बुरी बात हो गई? अरे दुखदाई काम हुआ या सुखदाई काम हुआ? क्यों? दुनिया का वातावरण युद्ध का बना रहे वो अच्छा, या युद्ध के वातावरण को थाम लिया वो अच्छा? अहिंसा परमो धर्म तो बोल दिया, लेकिन बोलने के बाद बीबी बाल बच्चों की सुरक्षा की कि जन्म जन्मांतर के लिए? परधर्मो भयावह, दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने के लिए मजबूर हो गए बीबी बाल बच्चे, है? मजबूर हुए ना। तो जो अपने परिवार की सुरक्षा नहीं कर सकता वो दूसरों का कल्याण करेगा, है? इसलिए रिजल्ट क्या है? बाबा ने तो बोला मांगने से मरना भला, और बौद्ध लोग क्या करते हैं? मांगते। राजा ही तो सफा चट हो गई शुरुआत में ही द्वापर में। तो जो अपना भला नहीं कर सकता, अपने परिवारजनों का भला नहीं कर सकता, वो सबका भला कैसे करेगा? करेगा? तो ये योग है, किसके साथ योग लगाएं? क्राइस्ट के साथ लगाएं, बुद्ध के साथ लगाएं, अब्राहिम के साथ लगाएं, या ब्रह्मा बाबा जिन्होंने ब्राह्मण धर्म रचा, नौ कुरियों के ब्राह्मण रच करके तैयार कर दिए, उनके साथ योग लगाएं? किसके साथ योग लगाएं? अरे चुप।
शिव
बाबा के साथ योग लगाएं? शिव बाबा की डिफिनीशन अरे साकार तो सब बैठे हैं, सबके अंदर निराकार आत्मा है, तो आत्मा सो परमात्मा हो गए ना। अरे अरे कौन है एक
जो शिव समान स्टेज बनाते
हैं?
जो शिव समान स्टेज बनाते
हैं? नहीं, ब्रह्मा बाबा ने ब्राह्मण तो बनाए लेकिन नौकुरियों के ब्राह्मण बनाए। उनमें भी जो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ कुरी है सूर्यवंशी, वो ब्राह्मण तो ब्रह्मा बाबा के ग्रुप से स्वतः ही अलग हो गए, यज्ञ के आदि में भी अलग हो गए थे। क्या दुनिया में जैसे हीरो क्षमा नष्ट हो गई, हीरो की क्षमा नष्ट हो गई, ऐसे ही ये हीरे समान बाप के बच्चे हीरो पार्टधारी यज्ञ के आदि में ही संगठन से टूट गए थे और अभी भी ब्रह्मा के संगठन से टूट करके सूर्यवंश में जुड़ रहे हैं, जुड़ गए या वहीं जुटे हुए हैं चंद्रवंश में है। तो बाकी जो बचे वो नीची कुरियों वाले बचे या श्रेष्ठ कुरी वाले ब्राह्मण बचे है? नीची कुरी वाले बचे। तो बताया ऊंचे ते ऊंचे बाप की खुशखबरी सबको बताओ, क्या ब्राह्मणों की पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना? तो विनाश ब्राह्मणों की पुरानी दुनिया का, कौन से ब्राह्मणों की पुरानी दुनिया है? बेसिक ब्राह्मणों की पुरानी दुनिया। बेसिक ब्राह्मण जड़ों के रूप में है सृष्टि वृक्ष की, या जड़ों के भी बीज हैं? है बेसिक ब्राह्मण जड़े हैं या बीज हैं? जड़ हैं। उनके भी कोई बीज हैं या नहीं है? जो बीज रूप आत्माएं हैं वो बीज रूप बाप के बच्चे हैं। क्या उन बीज रूप आत्माओं को निकालने का आखिरी श्रेय किसके ऊपर जाता है? उन बीज रूप आत्माओं का संगठन बनाने वाला, उस बीज रूप परिवार का मुखिया जो बाप कहा जाता है, वो प्रैक्टिकल में देखने में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? है? आना चाहिए। उसको छोटे बच्चे, अबोध बच्चे, जो दूसरे दूसरे धर्म का छिलका पर पहने हुए हैं, बीज तो हैं लेकिन दू और धर्मों का छिलका जिन पर चढ़ा हुआ है, कोई पर मोटा छिलका और कोई पर पतला छिलका, तो उस बाप को पहले कौन पहचानेंगे? उन बीज रूपों में कोई बड़े हैं कोई छोटे हैं, कोई 84 के चक्र में सबसे जास्ती पार्ट पाम बजाने वाले हैं, सब धर्मों का पूर्वज कहे जाते हैं, पूर्व माने पहले, जा माने जन्म लेने वाले। कितने हुए? 8 हुए। तो वो बाप को पहले पहचानेंगे प्रैक्टिकल जीवन में या दूसरे पहचानेंगे? हैं? वो ही पहचानेंगे। और जो पहचानते हैं प्रैक्टिकल जीवन में पहले पहले वो ही विश्व के बादशाह बनेंगे या बाप बनेगा। बाप जिसे हम बड़ा भाई कहते हैं मनुष्य सृष्टि का, वो बाप ने परंपरा कहां से ली है? फॉलो फादर। मनुष्य सृष्टि का बाप किसकी चलाई हुई परंपरा पर चल रहा है? अरे शिव बाप की चलाई हुई सारी परंपराएं हैं ना मूल रूप में। तो शिव बाप बड़े बच्चे को देता है तो सारी दुनिया के जो भी बाप हैं अपने बड़े बच्चे को देते हैं। जैसे शिव बाप खुद नहीं लेता, सुख खुद लेता है सृष्टि का, बच्चों को देता है, तो ऐसे ही जो बाप का बड़ा बच्चा है उसका धर्म क्या है? अरे विश्व की बादशाही का ताज खुद धारण करे या बच्चों को धारण कराए? है जो बाप का धर्म, जो बाप का धंधा है वो बच्चे का धंधा। तो बाप का धंधा है खुद नहीं लेता, बच्चों को देता है, ऐसे ही मनुष्य सृष्टि के बाप का क्या धंधा हुआ? विश्व की बादशाही खुद लेगा या रचना नंबरवार को देगा? है तो पहली पहली रचना कौन
है?
तो भक्ति मार्ग में भी दिखाते हैं पार्वती को फिर भी ताज है लेकिन शंकर को कोई ताज नहीं होता है।
सारा जिम्मेवारी तो उन्होंने उठाया।
क्या जिम्मेवारी उठाई?
शंकर जी महाराज।
क्या महाराज? जो बाप की फर्स्ट क्लास शिक्षा है अमृत छोड़ बिख काहे को खावे। इस दुनिया का दुनिया के हिसाब से जो बड़ा सुख माना जाता है उस सुख का त्याग किया। किया है? नहीं किया। जब नहीं किया तो सुख लेता है दुनिया भी या नहीं लेता है? अंश मात्र भी सही लेता है ना। और जब तक लेता है तब तक लेता है या देवता है?
लेता है।
क्या है?
लेता
है, देवता नहीं है। भले पुरुषार्थियों के बीच में वो अव्वल नंबर का लेवता है या देवता है? है?
देवता।
तो कहा जाता है वो संपूर्ण रूप कहा जाता है, संपूर्ण स्टेज के लिए कहा जाता है या अधूरी स्टेज के लिए कहा जाता है? तो संपूर्ण स्टेज हुई तो फिर लेवता है। और पार्वती है असली पार्वती। जिम्मेवारी किसने ली पवित्रता की? है पार्वती ने। इसीलिए तो कहते हैं कि पुरुष सब दुर्योधन दुशासन है। वो दुर्योधन दुशासन अपनी दुर्योधन दुशासन वृत्ति को उस वर्षे को छोड़ेंगे नहीं। तो जिम्मेवारी किसको दी? नई दुनिया का गेट किसको खोलने के लिए जिम्मेवारी दी? माताओं कन्याओं को, क्यों दी? क्योंकि माताएं कन्याएं हैं, जो कर्म कर्मेंद्रियों से कर्म करते हुए भी उस स्टेज को पहले पहुंचती हैं, जिसे कहते हैं विष्णु की वो स्टेज जो प्रैक्टिकल स्वरूप धारण करती है। ब्रह्मा के द्वारा सुनना सुनाना, शंकर के द्वारा बुद्धि का कार्य समझना समझाना, इन दोनों बातों से काम पूरा हो जाएगा। तो तीसरी शक्ति है वैष्णवी शक्ति, प्रैक्टिकल करके दिखाना, प्रैक्टिकल में परिवर्तन स्वरूप, परिवर्तन शक्ति, प्रैक्टिकल में परिवर्तन शक्ति क्या हुई? विष पीते रहना या मनबुद्धि से विष का त्याग कर देना, तो वो कन्याओं माताओं का आधार लिया, कन्याओं माताओं को ज्ञान कलश दिया, पुरुषों को नहीं दिया। दिया नहीं दिया? शंकर हो या ब्रह्मा हो, पुरुष हैं या नहीं है? पुरुष हैं, उन्होंने प्रैक्टिकल जीवन में जिम्मेवारी ली, प्रैक्टिकल कर्मेंद्रियों से जो कर्म किया वो कर्मेंद्रियों के कर्म में उन्होंने जिम्मेवारी ली नहीं ली? जब प्रैक्टिकल में जिम्मेवारी नहीं ली तो राम संप्रदाय हुए या रावण संप्रदाय हुए? रावण बड़ा प्रकांड विद्वान था, ज्ञानी था, लेकिन प्रैक्टिकल में कर्म क्या करता था? चोरी चकारी करना, विचार करना, ये श्रेष्ठ कर्म है। तो प्रैक्टिकल में रावण संप्रदाय हुआ ना, और राम ही रावण बनता है, कृष्ण ही कंस बनता है, क्योंकि कृष्ण वाली आत्मा ही राम में प्रवेश करके पार्ट बजाती है। काम के आधार पर नाम अलग अलग दे दिए हैं, श्रीनाथ जगन्नाथ हैं एक ही, ये अलग अलग हैं, एक ही व्यक्तित्व का नाम है श्रीनाथ, वो ही व्यक्तित्व जगन्नाथ। जैसा काम किया उस समय वैसा नाम पड़ गया।
नाम ही रावण बनता है, नाम ही रावण बनता है, ये क्या संभव? एक पहले ये बात,
रावण का मतलब क्या है? जो लोगों को, संसारी लोगों को रुलाता है, तो इब्राहिम वाली आत्मा या क्राइस्ट वाली आत्मा, 200-250 करोड़ क्रिश्चियंस क्राइस्ट को बाप मानते हैं, उनको सात्विक स्टेज में सुख देने का श्रेय निमित्त मात्र क्राइस्ट वाली आत्मा को मिलता है। जब सतो प्रधान है तो मिलता है, फॉलोअर्स सत्व प्रधान है तो लेते हैं। वही धर्म पिता और उसके फॉलोअर्स जब सृष्टि के अंत में तामसी बनते हैं तो अपने सारे ग्रुप को, सारे परिवार को, 200-250 करोड़ क्रिश्चियंस को दुख देंगे या सुख देंगे? वो हैं हद के बाप। कौन? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि। और राम वाली आत्मा बेहद का बाप, 500-700 करोड़ का बाप। संगम युग में 500-700 करोड़ को सात्विक स्टेज में मुक्ति और जीवन मुक्ति का सुख देता है, प्रैक्टिकल जीवन में देता है। देकर जाता है या नहीं जाता है? देकर जाता है। वही आत्मा कलयुग के अंत में जब महामृत्यु का समय होता है तो सारी मनुष्य सृष्टि के विनाश का निमित्त कहा जाता है। तो बड़ा रावण कौन हुआ है? राम ही रावण बनता है। वो रावण बनने में भी बाप और राम बनने में भी बाप है। इसलिए बोला समय को ऊंचा कैसे कहेंगे? समय जड़ है या चैतन्य है? जड़ है। चैतन्य ताकतवर होता है या जड़ ताकतवर होता है? चैतन्य ज्यादा ताकतवर होता है। तो जो चैतन्य ज्यादा ताकतवर होता है वो जड़ को चेंज करेगा या जड़ चैतन्य को चेंज करेगा? तो समय को परिवर्तन करने वाला कौन है? कौन आत्मा? जो सारे समय चक्र को क्रॉस कर जाए। वो है काल। काल माने समय, काल चक्र।
एक ही समय पे, एक ही समय पे राम किसी के ऊपर राम राम है और किसी के साथ राम है।
एक ही समय पर, एक ही समय पर राम कभी किसी के ऊपर राम बनता है और कभी किसी के ऊपर रावण बनता है, क्या हल्का प्रश्न है?
एक ही समय थोड़े ही कहा जाएगा कि जगन्नाथ भी एक ही समय में बनता है, ए उसी सेकंड में, और श्रीनाथ भी उसी सेकंड में बनता है। संबत एक एक जब बनेगा तो भी शूटिंग का कार्य जारी रहेगा या खत्म हो जाएगा? तो बस फिर चार अवस्थाओं से प्रसार होना है।
बाकी सबके लिए रावण है।
जब 500 करोड़ को मुक्ति जीवन मुक्ति मिलेगी तो 500 करोड़ की बुद्धि में सुखदाता कौन है? तो जो सुखदाई है वो ही तो सबको याद आएगा। इसलिए बोला मन मना बहु, मेरे मन में समा जा। तेरे मन में क्या है जो समा जा? अरे तेरे मन में एक शिव है, दूसरा न कोई। बिंदु है उसके मन में, नो संकल्प है काल, कोई दूसरा संकल्प नहीं। तो 500-700 करोड़ किस स्टेज में समा जाएंगे? बिंदु रूप में समा जाएंगे। जो बिंदु रूप में 500-700 करोड़ नंबर वार समा जाएंगे वो ही आत्माएं जिस नंबर से समा जाएंगी उसी नंबर से सृष्टि के आदिकाल में बाहर भी आएंगी। उसी बीज से सारी मनुष्य सृष्टि का विस्तार होता है, उसी बीज में सारा मनुष्य सृष्टि वृक्ष फिर समा जाए। न अहम तेषु ते मैं उन सब में नहीं हूँ, पत्तों में, तनों में, डालियों में, फलों में, फूलों में, लेकिन वो सब मेरे अंदर है। ये कौन सी आत्मा ने कहा? शिव ने कहा या मनुष्य सृष्टि के बाप ने कहा? है मनुष्य सृष्टि के बाप ने कहा। इसलिए बाबा कहते हैं चलो शिव बाप कहते हैं, क्या अरे वृक्षों में मैं पारिजात हूं, क्या बोला है वृक्षों में पारिजात हूं, नदियों में गंगा हूं, पर्वतों में मेरु पर्वत हूं, माने दुनिया में जो भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है वो खुद के ऊपर डाल दिया। इसलिए बाप ब्रह्म वाक्य मुरली में बोलते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा मुंह मियां मिट्ठू कौन है, क्या बताया मुरली में, शिव बाबा है। अरे है या नहीं है, नहीं हो मानो तो गीता उठा के देख लो, मुंह मियां मिट्ठू है या सच्चाई है। अरे ब्राह्मणों में पहला ब्राह्मण चोटी है या नहीं है, देवताओं में पहला ब्राह्मण देवता है या नहीं है, क्षत्रियों में पहला क्षत्रिय है या नहीं है, वैश्यों में अव्वल नंबर विशेष पहला वो है या नहीं है, कैसे अरे अरे मुसलमानों में कथा आती है जन्नत के बारे में, भूल गए अल्लाह मियां ने आदम और ईव को जन्नत में भेजा और ताकीद कर दिया के बॉडी के बीच का फल नहीं खाना। हजारों वर्ष तक वो स्वर्ग के सुख भोगते रहे और बाद में भूल गए ताकि क्या किया, उनमें कौन भूल गई, एडम भूल गया या ईव भूल गई, तो जड़त बुद्धि कौन हुआ है, ईव हो गई जड़त बुद्धि, भूल गई तो उसने आदम को बरगलाया और आदम बरगलावे में आ गया, क्यों आदम तो पिता है पुरुष है क्यों बरगलावे में आ गया है, उसकी कमजोरी स्त्री है, नहीं क्योंकि भारत मातृ प्रधान देश है, जिस भारत में परम पुरुष शिव आता है वो शिव जिसमें आता है उसका नाम परम ब्रह्म रखता है, परम माने बड़ी, ब्रह्म माने माँ, बड़े से बड़ी माँ है। तो जो भी पैदा हुए भारत में या जो भी भारतवासी हैं, उन भारतवासियों की बुद्धि में कौन बसा हुआ है, है? वो ही माँ बसी हुई है जिसके लिए शास्त्र में आया है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो परम ब्रह्म ही सबसे बड़ा गुरु है, उसके प्रति नमन बुद्धि को झुकाना है, बुद्धि अर्पण कर देना है, बुद्धि अर्पण हो गई तो गुजराएगी। तो जितने भी भारतवासी हैं भारत में मन बुद्धि से बात करने वाले हैं वो सब भारत माता है तो बच्चे भी मात्र प्रधान हैं या कुछ और हैं? जो पहला पार्टदारी है भारत का वो ही मात्र प्रधान है, और मात्र प्रधान है तो प्रभावित होने वाली प्रजा है या नहीं है? हैं? प्रभावित होने वाली प्रजा हो गई, माता होती ही है प्रजा किसकी? पिता की। तो ये सारे ही भारतवासी A to Z परम ब्रह्म की जो भी संतान है वो सारे के सारे भारतवासी, उनकी ये टेंडेंसी है कि द्वैतवादी द्वापर युग से जो जो दूसरे दूसरे धर्म पिताएं भारत में आए उन धर्म पिताओं से और उनके फॉलोअर से प्रभावित होते रहे, उन्होंने जो सुनाया सत्य वचन महाराज, प्रभावित माने प्रजा। वो राम वाली आत्मा भी पहले पहले परम ब्रह्म है, बच्चों के सामने पहले कौन प्रत्यक्ष होता है? माता प्रत्यक्ष होती है ना, तो पहले पहले वो परम ब्रह्म है, माता है, तो सारे ही भारतवासी माता प्रधान हो गए, सब कन्वर्टेड आत्माएं हैं। हाँ, मोस्टली ऐसी हैं जो उसी जन्म में कन्वर्ट हो जाती हैं जीवन रहते, और कोई ऐसी हैं जो जीवन रहते कन्वर्ट नहीं होती फिर भी प्रभावित हो जाती हैं। जैसे सिद्धार्थ का बाप, सिद्धार्थ बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो गया, बाप ने उसे देश निकाला दे दिया, खुद कन्वर्ट नहीं हुआ जीवन रहते, लेकिन बच्चा जाकर के चीन जापान जैसे देशों में जाकर के इतना प्रभावशाली बन गया कि एक एक भाषण में उसके फॉलोअर्स भी 60,000 को कन्वर्ट कर रहे थे, सारी दुनिया में तहलका मच गया। तो जो जन्मदाता बाप है उसको अपने खून का फकुर नहीं आएगा? तो वो उस जन्म में तो कन्वर्ट नहीं हुआ, लेकिन अंतरात्मा अंदर से कन्वर्ट हो गई, वो अंतरात्मा का कन्वर्शन उसे बौद्ध धर्म में 2-4 जन्म के बाद जन्म दे देता है। तो ऐसे ही है, जो बीज रूप आत्माएं हैं वो उस जीवन में कन्वर्ट नहीं होती, लेकिन अगले जन्मों में वहां जाकर के उस धर्म में जन्म ले लेती है, और जहां जन्म लेती है वहां उनका संग का रंग जरूर लगता है। तो बताया सारा परिवर्तन किस आधार पर होता है? है भारतवासी किस आधार पर परिवर्तन वो कन्वर्ट होते रहे? है संघ के रंग से प्रभावित हुए, अब उनमें चाहे प्रजापिता वाली आत्मा हीरो पार्टधारी ही क्यों न हो, वो भी मूल रूप में इस सच रूपी रंगमंच पर माता का पार्टधारी है। क्या नाम बताया? परम ब्रह्म। तो वो आत्मा भी प्रभावित होती है, उस जीवन में प्रभावित भले नहीं होती लेकिन अगले जन्मों में जाकर वहां उन उन धर्मों में जन्म ले लेती है, क्योंकि सिर्फ सूर्यवंशियों को राजयोग की पढ़ाई पढ़ाता है, राजयोग का वर्षा देता है, या सभी धर्म वाले उससे राजाई का वर्षा लेते हैं? है? सिर्फ सूर्यवंशी लेते हैं? सूर्यवंशी तो इसी जन्म में लेते हैं संगम में, लेकिन और धर्मों की आत्माएं भी योगी बनती हैं, मनमना भव का महामंत्र लेती हैं प्रैक्टिकल जीवन में या नहीं लेती हैं? है? नहीं लेती? लेती है। तो जिन्होंने महामंत्र का प्रभाव लिया वो सब उसी से राजयोग सीखती है। यहां राजयोग सीखा, वहां ब्रॉड ड्रामा में जब वो आत्माएं आएंगी, बीज रूप आत्माएं सूर्यवंशी, तब ही उनको राजाई शुरू प्राप्त होगी, क्योंकि जो भी धर्म पिताएं आते हैं धर्म स्थापन करते हैं, राजाई स्थापन नहीं करते, अपनी राजधानी नहीं बनाते। उनकी राजधानी तब आरंभ होती है जब सूर्यवंशी आत्माओं का ग्रुप उनके सहयोग में जाकर उन धर्मों के बीच में जन्म लेता है। जैसे भारत में मुगल सल्तनत कहां से शुरू होती है? पहला बादशाह कौन बनता है? है बाबर। तो ड्रामा प्लान अनुसार नाम पड़ता, क्या नाम पड़ गया? बाबर। मुगल सल्तनत का भी वो बाबा है। क्या किया? ज्ञानी तो आत्माओं में नंबर वन है या भक्त आत्माओं में नंबर वन है या बैरागी आत्माओं में नंबर वन है? है? ज्ञानी आत्माओं में नंबर वन है। इसलिए भारतवर्ष में जो अंधश्रद्धा फैली हुई थी, क्या कौन सी अंधश्रद्धा? मूर्ति पूजा की अंधश्रद्धा, इसे अंधश्रद्धा कहेंगे या श्रद्धा विश्वास कहेंगे? हैं? अंधश्रद्धा को खंडन करने वाली आत्मा वो बनी और उसकी परंपरा में फिर एक से एक बढ़कर के मूर्तियों का खंडन करने वाले आते गए। सबसे ज्यादा मूर्तियों का खंडन किसके राज्य में हुआ? मुगलों में। हाँ? नहीं, वो शुरुआत थी औरंगजेब। हाँ, तो बताया वो ज्ञानी आत्मा जहां भी जन्म लेती है वो ज्ञान की रोशनी बढ़ाएगी या अज्ञानता को पैदा करेगी? जैसे सती प्रथा है, सती प्रथा का
फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? है भारत में कब पड़ता है? अरे राजा राम मोहन राय से पहले सती प्रथा नहीं थी क्या? तो वो ही तो पूछा। ये सती प्रथा जो चली है हिस्ट्री में, उसका फाउंडेशन कहाँ पड़ा? अरे
पृथ्वीराज चौहान का पत्नी जब सुसाइड किया।
अरे हर बात का, हर परंपरा का फाउंडेशन संगम युग से पड़ता है। संगम युग में ज्ञान युक्त फाउंडेशन पड़ता है और भक्ति मार्ग में अज्ञान युक्त हो जाता है। संगम युग में सूक्ष्म बात बेहद की होती है और भक्ति मार्ग में वो हद की बात हो जाती है। ज्ञान मार्ग में संगम युगी कृष्ण भगवान जिसे कहा जाता है वो संगम युगी है या सतयुगी है? हैं? संगम युगी है। कौन सी गऊ की पालना करता है? जानवर गऊ की पालना करता है? हैं? ह्यूमन गऊ की पालना करता है। ये ज्ञान की बात है, स्वभाव संस्कार की बात है। ये भारत की कन्याएं माताएं हैं जिन्हें जीवन में माई बाप जिस खूंटे से बांध देते हैं सारा जीवन उसी खूंटे से बंधी रहती है। इतना सीधा स्वभाव, सादा स्वभाव होता है। भक्ति मार्ग में उन्होंने जानवर गऊ को ले लिया। ऐसे ही अनेक प्रकार की बातें हैं जो भक्ति मार्ग में जड़त्व में ही बुद्धि के आधार पर चलती है। ज्ञान मार्ग में योगाग्नि में भस्म किया कन्याओं माताओं के संगठन ने। क्या कहा? योगाग्नि में देवान को भस्म किया। और भक्ति मार्ग में क्या होता है? योगाग्नि की जगह स्थूल आग में भस्म करने लगे देवान को या देह को? देह को भस्म करना शुरू कर दिया। तो मूल परंपरा की शुरुआत कहां से हुई? संगम युग से हुई। तो बताया कि योग का अर्थ नहीं समझते हैं, उस योग के ऊपर अपना वातावरण बनाने की बात, वो योग के आधार पर वातावरण बनाना है, सिखाना है। कब बनेगा? पूरे संगठन की बुद्धि एक अग्र, एक के आगे, अग्र माने आगे, बुद्धि का योग एक के आगे लगेगा तो वातावरण बनेगा, वाइब्रेशन पावरफुल बनेगा। या एक की बुद्धि उधर लगी है, दूसरे की बुद्धि उधर लगी है, तीसरे की बुद्धि उधर लगी है, कोई बच्चे बैठे हैं उनकी गुड्डे गुड़ियों में बुद्धि लगी है, तो वातावरण पावरफुल बनेगा, वाइब्रेशन शक्तिशाली बनेगा। संसार का परिवर्तन नहीं हो सकता जब तक योग का अर्थ नहीं समझा है। क्या है सहज राजयोग? बोलने में सहज है, साकार में निराकार को याद करो, फिर अमृत वेले अपनी अपनी स्थिति को देखें,
क्या साकार में निराकार को याद करने में बुद्धि स्थिरियम रहती है? है निराकार याद रहता है? रहता है? अरे जोर से बोलो ना। नहीं, साकार याद रहता है? अरे साकार याद रहता है लगातार। फिर फायदा क्या? अमृत वेला तो सफल नहीं हुआ ना, व्यभिचारी योग तो हो गया ना। याद व्यभिचारी हो गई या अव्यभिचारी रही? क्या हुआ? व्यभिचारी योग हो गया। वाइब्रेशन बनेगा या बिगड़ेगा? क्या रिजल्ट आएगा? हाँ, बाबा ने ये जरूर बोल दिया, ब्रह्मवाक्य मुरली में ही बोल दिया, ये ब्राह्मणों का संगठन ऐसा पावरफुल बन जाएगा कि एक भी विकारी संकल्प चलाने वाला इस ब्राह्मण के संगठन में पांव भी नहीं रख सकेगा। अभी क्या है, अपने अपने अंदर देखें कितना संग दोष में आते हैं। बुद्धि का संग दोष छोड़ो, जो अमृत वेले ऑटोमेटिक होता ही रहता है। इंद्रियों का संग दोष, कर्मेंद्रियों का संग दोष कितना होता है, यहां तक कि ब्रह्मवाक्य मुरली में बोल दिया, तुम बच्चे 10-20-50 भूले तो दृष्टि के विचार की रोज ही करते रहते हो। अब बताओ, ब्राह्मणों का संगठन पावरफुल बनेगा या कमजोर बनेगा? हैं? कहां जा रहा है तू हे जाने वाले? कहां की रूहानी यात्रा हो रही है? है? अरे ऊंचे से ऊंचे भगवंत को पहचाना, उस भगवंत तक पहुंचने की रूहानी यात्रा हो रही है नहीं हो रही है? हो रही है, जरूर पति परमेश्वर को पहचान लिया है, पक्का पहचाना ना है? जैसे कन्या होती है, सगाई होती है, तो सगाई होने के बाद कन्या की बुद्धि का योग कहां लटक जाता है? है? एक तरफ लटक जाता है ना। तो ऐसे बुद्धि योग लटक गया, न लटकने का कारण क्या है, भटकने का कारण क्या है? हा? अरे अभ्यास है न तो कौन थे है, वैराग्य चग्रहियते। अभ्यास करें, बार बार अभ्यास करें, बार बार विस्मृति हो जाती है, बार बार उसी स्मृति में टिकने की कोशिश करें और उस कोशिश के पीछे बुद्धि में वैराग आना चाहिए। विराग का मतलब ही है विपरीत राग, विपरीत प्यार। क्या? किसके विपरीत? ये जो दुनिया हम देख रहे हैं इन आंखों से, जो कुछ भी देख रहे हैं, जड़ या चेतन, जो भी संबंधी देख रहे हैं, जो भी पदार्थ देख रहे हैं, जो भी घर मकान जमीन जायदाद ऊंची ऊंची बिल्डिंगें दिखाई पड़ रही हैं, उन सब से क्या वैरा, ये सब नष्ट होने वाले, ये कोई कुछ काम नहीं आने वाले हैं। आज आशा लगाए बैठे हैं कि ये संबंधी बिगड़े हालात में हमारा सहयोग देंगे। दुनिया वालों की बात छोड़ो, ब्राह्मणों की दुनिया की बात हो रही है। यज्ञ के आदि में क्या हुआ था, जो संबंधी इतना प्यार दिखाते थे कि प्यार दिखाने के पीछे इतने दीवाने हो गए कि कन्याओं माताओं को पांच पांच सात सात तालों के अंदर रखा कि हम जितनी तुम्हारी सुरक्षा कर सकते हैं दुनिया में कोई नहीं कर सकता। फिर जब हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हुई, खून की नदियां बहने लगी, तो छोड़ छाड़ के भाग गए। उस समय उन कन्या माताओं ने पहचान लिया इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, जिन्हें आज हम अपना समझे बैठे हैं या जो दम भर भर के बोलते हैं, ऐसा व्यवहार करके दिखावा करते हैं कि हमसे ज्यादा प्यारा तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता, वो सब झूठे हैं। ये वैराग आना चाहिए, उसको कहेंगे ज्ञान, नहीं तो अज्ञान। ओम शांति।